मल्होत्रा साहब, शान के हाथ रुक गए और निगाहें आवाज की दिशा में घूम रहीं, जहां आरवी जमीन पर बैठी डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी। उसके माथे पर लाल निशान पड़ गया था और छिल भी गया था। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उस पर नजर पड़ते ही शान बाकी सब भूल गया और उस आदमी को छोड़कर आरवी की तरफ दौड़ पड़ा। वो आदमी जमीन पर जा गिरा। शान आरवी के पास घुटने टिकाते हुए बैठ गया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए परेशान सा बोला, तुम ठीक हो? आरवी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपने कांपती हथेलियों से उसके चेहरे, कंधों और शरीर को छूते हुए रूंधे गले से बोली, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शान ने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की। वहीं आरवी उसकी बात सुनकर उसके सीने से लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। शान ने कार्तिक को इशारे में ही कुछ कहा और आरवी को अपनी बाहों में उठाकर कार की तरफ बढ़ गया। उसकी कार काफी डैमेज हो चुकी थी, तो कार्तिक ने उसे दूसरी कार में जाने को कहा। ड्राइवर पहले ही मौजूद था। शान आरवी को लेकर पीछे की सीट पर बैठ गया और ड्राइवर को कार हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने को कहते हुए कार का पार्टीशन खोल दिया। आरवी अब भी उसके सीने से लगे सिसक रही थी। शान ने उसकी पीठ सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, आरवी शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, चुप हो जाओ, और कितना रोगी। आरवी का रोना अब भी जारी था, तो शान ने उसको खुद से दूर किया और उसके आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछते हुए बोला, शांत हो जाओ, सब ठीक है। आरवी ने डबडबाई आंखों से उसे देखा और सिसकते हुए बोली, वो मार रहा था, अगर आपको कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना, तो अब रोना बंद करो, एकदम चुप करके बैठ जाओ, एक आंसू नहीं बहना चाहिए अब तुम्हारी आंखों से, शान ने सख्ती से कहा। पर आरवी अब भी सिसकते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी, जानता हूँ, पर अब डरने वाली कोई बात नहीं, तो चुप हो जाओ। इतना कहकर उसने आरवी को फिर से अपने सीने से लगा लिया। ये दूसरी बात था जब उसकी वजह से आरवी की जान खतरे में पड़ गई थी, और ये सब अमरजीत ठाकुर ने किया था। इतना ही बहुत था शान का खून खौलाने को, पर अभी वो आरवी के लिए एकदम शांत बना हुआ था। आरवी कुछ देर में कुछ शांत हुई और उससे दूर होकर उसके चेहरे को छूकर बोली, आपको इतनी चोट लग गई? शान ने उसकी हथेली को अपने हाथों में थाम लिया और फीकी मुस्कुराते हुए बोला, इतनी इतनी चोटों से मुझे कुछ नहीं होगा, तो तुम शांत हो जाओ। आरवी एकटक शांत को देखती रही। शान को उसका यूं देखना अजीब लग रहा था, तो उसने चेहरा फेरना चाहा, पर आरवी ने उसके गाल पर अपनी हथेली रखकर उसका चेहरा अपने तरफ घुमा लिया और शान के कुछ सोचने से पहले ही उसके लबों को अपने थरथराते लबों से ढक दिया। शान अचंभित सा उसको देखने लगा। कुछ सेकंड बाद आरवी ने उसके लबों को आजाद किया, पर पीछे नहीं हटी और शान की आंखों में झांकते हुए बोली, आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? शान उसके इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ पल खामोश सा उसकी आंखों में देखता रहा, जहां उसे खोने का डर मौजूद था। फिर उसके हाथ को अपने गाल पर से हटाते हुए बिना किसी भाव के बोला, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम, तब तक चुपचाप बैठो। आरवी की आंखों में नमी तैर गई। उसने रूंधे गले से कहा, शांतनु, क्या हम यहाँ से दूर नहीं जा सकते? कहीं दूर चलते हैं, जहाँ बस हम और हमारा परिवार, हमारा प्यार हो और हम सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकें। आरवी की बात सुनकर शान के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने आरवी की तरफ सर घुमाया और उसको घूरते हुए बोला, लगता है तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, या फिर अपने बाप के साथ मिलकर तुम ये सब कर रही हो। वो मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये घटिया चालें चल रहा था, ताकि अपनी बर्बादी को ना देखना पड़े, और तुम मुझे यहाँ से दूर लेकर जाती हो ताकि तुम्हारे बाप के काले करतूत कभी दुनिया के सामने ना आए और वो मुझसे बच जाएं। शान की बात सुनकर आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने घबरा कर कहा, नहीं, आप मुझे गलत आरवी अपनी बात पूरी भी नहीं कर सकी थी कि शान ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए सख्त लहजे में बोला, एक और शब्द नहीं, क्योंकि अब सब समझ चुका हूँ मैं। तुम भी अपने बाप से मिल चुकी हो और उसे मुझसे बचाने के लिए प्यार का नाटक खेल रही हो मेरे साथ, ताकि मुझे झुका सको। पर स्वीट हार्ट, तुम्हारी इन कोशिशों का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो मैं अपने इरादे बदलूंगा, ना तुम्हारे बाप को चैन से जीने दूंगा और ना ही कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, क्योंकि एक खूनी, चालबाज, धोखेबाज और फरेबी आदमी की बेटी को मैं अपनी जिंदगी में लाकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहता, तो बंद करो अपना ये नाटक। शान ने धधकती आंखों से उसको घूरा, फिर चेहरा फेर कर बैठ गया। आरवी खामोश बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। कितनी ही कोशिश करती थी, पर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि शान वापस नफरत की आग में झुलसने लगता और उस आग से वो खुद भी नहीं बच पाती थी। कार में अब सन्नाटा पसर गया। आरवी शान को देखते हुए सिसकती रही, पर उससे कुछ कह ना सकी। कुछ देर बाद कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी। दोनों अंदर गए, उनकी ड्रेसिंग हुई, फिर शान ने आरवी को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया और खुद ऑफिस चला गया। घर पहुंचने पर आरवी के माथे और हाथ पर बैंडेड देखकर सभी परेशान हो गए, तो आरवी ने कह दिया कि रिहर्सल के वक्त गिरने से चोट लग गई, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, और फिर अंशु को लेकर अपने रूम में चली गई। अर्पिता जी ने उसको आराम करने को कहा और कुछ देर बाद दोनों का खाना रूम में ही भेज दिया। आरवी को शान की चिंता हो रही थी, उसने अंशु को तो खिला दिया पर खुद ने एक निवाला तक नहीं खाया और अंशु को सुलाकर खुद शान का इंतजार करने लगी। रात कटी और अगला सवेरा हो गया। आरवी की आंख खुली तो खुद को बैठा पाया और बगल में बस अंशु थी, मतलब शान रात को घर नहीं आया। उसने तुरंत फोन लेकर उसको फोन लगाया पर शान का फोन बंद आ रहा था। कुछ सोचते हुए उसने कार्तिक को फोन लगाया पर उसने भी फोन नहीं उठाया। आरवी परेशान सी बेडरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ शान अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठा था, सर चेयर के बैट से टिकाए, आंखें बंद किए हुए और चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसके सामने ही कार्तिक भी बैठा था और सिस्टम पर कुछ कर रहा था। दोनों के थकान भरे चेहरों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि रात भर वो सोए नहीं है। कुछ देर तक सिस्टम को घूरने के बाद अचानक ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, डन सर, अब ठाकुर अंपायर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कंपनी के 75% शेयर्स अब हमारी कंपनी के नाम हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट में उनकी हालत खराब है। मेन बिजनेस के साथ जितने साइड बिजनेस हैं सब बर्बाद हो गया है। उनका सारा पैसा डूब गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो रातों रात दिवालिया हो गए हैं। सारा बिजनेस ठप हो चुका है। अब तक तो इन्वेस्टर्स ने उन पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया होगा। ऐसे में खुद को पूरी तरह डूबने से बचाने का एक ही रास्ता है उनके पास, और वो है अपनी कंपनी बेचना। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने के लिए उन्हें या तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होगी और वो रोड पर आ जाएंगे, या फिर बैंक से लोन लेना होगा। और जैसी अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई बैंक उन्हें लोन देने को तैयार नहीं होगा। मुझे लगता है यही सही वक्त है। आपको उनको ऑफर देना चाहिए और बाकी के 25% शेयर्स भी अपने नाम करवाकर कंपनी को टेक ओवर कर लेना चाहिए, कार्तिक बोलता गया। और शान आंखें बंद किए सारी बात सुनता रहा पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था।
कार्तिक चुप हुआ। इसके साथ ही कैबिन का दरवाजा खुला और रेहान बदहवासा दौड़ता हुआ अंदर घुसा। अंदर आते ही उसकी नजर शान पर गई और उसने हैरान परेशान नजरों से उसको देखते हुए कहा, शान, तुझे पता है न्यूज़ में क्या खबर आ रही है? शान ने रेहान की आवाज़ सुनी तो आंखें खोली और ठीक से बैठते हुए उसको देखकर शांत लहजे में बोला, क्या खबर आ रही है न्यूज़ में? ठाकुर एम्पायर ध्वस्त हो चुका है। उनके शेयर्स के प्राइस नीचे गिर चुकी है और लगातार बेचे जा रहे हैं। कंपनी ने जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया था वहाँ उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मार्केट में लगा पूरा पैसा डूब चुका है और अब कंपनी डूबने की कगार पर है। रेहान ने सब उसे बताया जो अभी अभी कार्तिक ने बताया था, पर शान के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। उसका फीका रिएक्शन देखकर रेहान का माथा ठनका और उसने उसको शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या ये सब तूने किया है? हाँ, शान ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जिसे सुनकर रेहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आंखें फाड़े उसको देखते हुए कहा, क्यों किया तूने ये? हमने तो डिसाइड किया था ना कि पहले ठाकुर का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे, उसके बाद उसको बर्बाद करेंगे। फिर तूने अचानक ये फैसला क्यों लिया और मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि बताने का वक्त नहीं था। कल फिर अमरजीत ठाकुर ने मुझ पर हमला करवाया और ये उसकी उसी गलती की सजा है कि उसका बना बनाया बिजनेस एक झटके में तबाह हो गया। अभी तो बस बिजनेस ही बर्बाद किया है। एक बार प्ले लाइव हो जाए और दुनिया के सामने उसका असली चेहरा आ जाए, उसके बाद उससे उसका सब कुछ छीन कर मैं उसको और उसके पूरे खानदान को सड़क पर ले आऊंगा। शान की आंखों में गुस्से और बदले की ज्वाला धधक रही थी। अब जाकर रेहान का ध्यान शान पर गया। उसके माथे पर बैंडेज लगा था, होठ के किनारे पर हल्की सूजन थी, कुछ खरोचों के निशान से भी थे। रेहान अब और ज्यादा परेशान हो गया और चिंता भरे स्वर में बोला, ये कब हुआ? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ज्यादा तो नहीं लगी तुझे? तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तू चिंता मत कर। चल तू आज ऑफिस का काम देखे, मैं जरा अमरजीत ठाकुर का हालचाल पूछ कर आता हूँ। शान ने कार्तिक को देखा तो उसने कुछ पेपर्स उसके तरफ बढ़ा दिए। रेहान ने रेहान को यहीं रुकने को कहा और खुद कैबिन से बाहर चला गया। रेहान परेशान सा वहां बैठ गया।